कुंज बिहारी। फाउंडर आचार्य शिव दे होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्धमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज़ सिमिल डिवोटीज़ ऑल ग्लोरीज़ सिमिल डिवोटीज़ ऑल ग्लोरीज़ सिमिल डिवोटीज़ ऑल ग्लोरीज़ श्री गुरु एंड गौरांगा। तो ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के आठवें अध्याय में जो कुंती महारानी भगवान की स्तुति करते हैं उसमें एक बड़ी विचित्र बात, एक विशेष प्रार्थना कुंती देवी की तो बड़ी प्रसिद्ध है। प्रभुपाद ने इसको बार बार उल्लेख किया है कि कुंती महारानी विपत्तियाँ मांग रही भगवान से। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या गहराई है, क्या कारण है, क्योंकि विपत्तियाँ मांगने की आवश्यकता नहीं है। विपत्तियाँ तो इस स्थान में है ही हैं, है ना। दुखालयम विपत्तियों का ही स्थान है ना। फिर कुंती देवी विपत्तियों क्यों मांग रही भगवान से? भगवान से विपत्तियाँ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है जब हम विपत्तियों के बीच में ही हमेशा हैं, है कि नहीं। तो ये विषय थोड़ा गहरा है तो हम इसमें चर्चा करेंगे। कुंती महारानी कहती हैं, विपदा संतुता सस्वं तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ फिर आएं, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का ये अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। भवतो दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन क्या होता है? अपुनर्भव दर्शनम, पुनर्भव का दर्शन नहीं होता है जिसमें, मतलब बार बार जन्म मरण का दर्शन नहीं होता है आपके दर्शन से। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। सामान्यतः आर्थ जरूरतमंद बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं, मतलब पुण्यात्मा। भगवान ने कहा ना चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतम अर्जुन, चार प्रकार की पुण्यात्मा ही मेरी पूजा करते हैं, मेरा भजन करते हैं। तो पहला है आर्त, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्त होता है दुख में विपत्तियों में, और दूसरा है जिज्ञासु जानने की इच्छा करता है, और तीसरा अर्थार्थी जरूरतमंद, और चौथा ज्ञानी। ये पुण्यात्मा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं चाहे वे जिस स्तर के हों माया द्वारा गुमराह होने के कारण भगवान के पास नहीं फटकते। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हर कोई दुखों में भगवान को याद करता है, ऐसा नहीं है। जो पुण्यात्मा होता है वो दुख में भगवान को याद करता है, लेकिन जो दुष्ट है तो दुख में भी भगवान को याद नहीं करता। जैसे रावण था तो इतनी विपत्ति में पड़ गया वो, लेकिन तो भी वो अहंकार नहीं छोड़ रहा है, घमंड नहीं छोड़ रहा है, वो फिर भी सोच रहा है कि मैं राम को मार सकता हूँ और सीता को भोग सकता हूँ, जबकि एक एक करके सब नष्ट हो रहा है, उसका ध्वस्त हो रहा है ना, और मरते मरते भी उसने घमंड नहीं छोड़ा, तो दुष्कृति है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना है। तो कुंती महारानी अपने को इतना कमजोर मानती हैं, हालांकि ये कुंती महारानी की स्थिति नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, लेकिन जो कम पुण्यात्मा है तो भगवान को जो है ना वैसे याद नहीं कर पाता, लेकिन जब कष्ट पड़ता है तो जरूर याद करता है। तो कुंती महारानी जो है अपने को इसी प्रकार का मानती हैं। अतः भले ही तथा कथित आपत्तियाँ आएँ उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं जिसका अर्थ है मुक्ति। तो आपत्तियों में क्या होता है कि भगवान का स्मरण होता है, किस लिए? आपत्तियाँ दूर हों। तो कुंती महारानी विपत्तियाँ मांग भी रही हैं, हैं क्यों? जिससे कि वो विपत्तियों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगी है ना। तो ये है तो मूर्खता कि हम जो है पहले से भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि विपत्तियां ही ना आए, है कि नहीं? तो ये स्थिति जो है ना एक बड़ी जो है ना समझिए कि महामूर्खता की स्थिति है ये, है कि नहीं? और कुंती महारानी जो है इसका संकेत कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार के लोग कितने महामूर्ख हैं। तो जब विपत्तियां आए तो विपत्तियां दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन पहले से ही प्रार्थना नहीं करते कि विपत्तियां ही ना आए। तो कुंती महारानी कहते हैं विपत्तियां आए, विपत्तियां आएंगी तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे विपत्तियां दूर करो, है ना। तो उसमें जो है फिर वो विपत्तियां दूर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जन्म मरण की जो विपत्ति है वो तो दूर होगी। आपके स्मरण का जो है ना जो असली फल है वो क्या है? जन्म मरण की विपत्ति दूर हो, है ना। तो अगर ये विपत्तियाँ अगर आती रहें तो अच्छा है, जैसे कि हमारी वो बड़ी भारी विपत्ति जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं वो स्वतः दूर होगी अगर आप स्मरण करेंगे भगवान का। चाहे छोटी छोटी विपत्तियों के लिए आप भगवान का स्मरण करो, है ना। तो ये जब सूर्य का उदय होता है तो सब प्रकार का अंधकार दूर होता है कि नहीं? तो कृष्ण का जब स्मरण किया जाता है तो सब प्रकार की विपत्तियाँ दूर होती हैं। कोई ये थोड़ी कि भाई ये विपत्ति दूर होगी और वो विपत्ति दूर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। देवताओं का स्मरण करने से ही होता है कि भाई जो आपको चाहिए तो वही होगा, कृष्ण का ऐसा नहीं है कार्य। कृष्ण का स्मरण करेंगे तो सब प्रकार की विपत्तियाँ दूर होंगी, है ना। तो कुंती महारानी जो है इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में छोटी छोटी विपत्तियाँ भी आते रहें, इन इस बहाने हम आपका स्मरण तो कर सकें, और उस स्मरण के द्वारा जो बड़ी भारी विपत्ति जो असली विपत्ति है जन्म मरण की वो दूर होगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान है कृष्ण की चरण कमल। वो उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ करता है जितनी सरलता से गोखुर के निशान को लांघा जा सकता है। कृष्ण की चरण कमल का ये प्रभाव है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो। पदम पदम में विपदाम न तेषां। तो यहाँ तो पद पद पर विपत्तियाँ हैं, विपत्तियाँ, और कुंती महारानी मांग रही विपत्तियाँ आएँ, विपत्तियाँ आएँ। इसका मतलब यही है कि हमें विपत्तियाँ दिखाई दें। विपत्तियों से हम घिरे हुए हैं हमेशा, लेकिन तो भी हमारी आँखें बंद रहती हैं और हम सोचते हैं कि हम संपत्तियों से घिरे हुए हैं। अपने को हम संपत्ति से घिरा हुआ समझ रहे हैं जबकि हैं विपत्ति से घिरे हुए, है ना। तो कुंती महारानी तो केवल आँखें खोलना चाहती हैं कि हम आँखें खोलें अपनी, हैं कि हम वास्तव में विपत्ति से घिरे हुए हैं। जब कुंती महारानी कहती हैं विपदा संदुता सत्वत, कि विपत्तियाँ हों, इसके अंदर हमारे सामने हों विपत्तियाँ, है कि नहीं। तो विपत्तियों का दर्शन हो, कुंती महारानी यही कहती हैं, भवतो दर्शनम, जिसमें आपका दर्शन होगा विपत्तियों में, हम आपको देखेंगे, आपका दर्शन करेंगे कि आप हमारी विपत्तियों को दूर करने वाले हो। नहीं तो क्या आवश्यकता है भगवान की, अगर कोई विपत्ति नहीं है तो भगवान की क्या आवश्यकता है, है ना। ये सामान्य व्यक्ति यही सोचता है, फिर मंदिर क्यों जाएं, हैं, फिर क्यों जो है भगवान से प्रार्थना करें, फिर क्या मांगना है, मांगने क्या है, क्या जरूरत भगवान की। हाँ, जब विपत्ति आए तो फिर हाँ अब ये कारण है, अब तो सही कारण है, अब तो जाना चाहिए भगवान के पास, तो ये उचित कारण समझते हैं। नहीं तो क्या उचित कारण है, क्या जरूरत है, अभी ठीक से फल फूल रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे में हैं, सब प्रकार की सुरक्षा है, सब कुछ है, तो क्या जरूरत है इतना सब करने की, है ना। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए होता है। तो विपत्तियाँ आए, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में भगवान ने इस जगत को आपत्तियों से परिपूर्ण कष्टप्रद स्थान बतलाया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, है ना, और भी अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने कहा है। अल्प ज्ञानी पुरुष बिना ये समझे कि स्थान आपत्तियों से पूर्ण है, इन आपत्तियों के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है चलेगा, इस तरह से काम चल रहा है चलाओ। तो इस तरह से जो है ना अल्पज्ञानी व्यक्ति जो है ना कोशिश करता है कि चलो ठीक है, जैसे भार है इस कंधे में रखा हुआ है तो इस कंधे में रख लिया, चलो अब ठीक है अब चलेगा, अब आराम है ना, भार है कि नहीं। समुद्र में डूब रहा है वो व्यक्ति, है ना, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको तैरने की शक्ति आ गई तो सोचता है ठीक है अभी तो मैं ठीक अभी तैर रहा हूँ, कहाँ तक तैरेगा, डूबेगा वो, लेकिन वो सोच रहा है कि ना ना अभी तो ठीक अभी ठीक है ना। तो ये समस्या है अल्पज्ञानी, उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही पता नहीं होता जो आनंदमय और निरापद है। अतएव चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियाँ तो सभी परिस्थितियों में आती हैं, सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहिए। ये ज्ञानी जो ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो ज्ञानी की ये स्थिति होती है कि विपत्तियों में जो है वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता, नहीं तो समस्या ये होती है कि विपत्तियाँ आएंगी तो फिर वो अपना भजन छोड़ देता है, जो भजन शुरू किया वो भजन छोड़ देता है ना। यहाँ पर उपाय दूसरे प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि कुंती महारानी ये कहते हैं विपदा संदुता, विपत्तियाँ आती रहें। एक तो ये कुंती महारानी की प्रार्थना है कि विपत्तियाँ आएँ, आप हमें विपत्तियों में डालो, एक तो ये है। दूसरी व्याख्या प्रभुपाद ये भी है कि जो ज़्यादा उन्नत भक्त होता है, पुण्यात्मा, ज़्यादा पुण्यात्मा है ज्ञानी, तो ज्ञानी ज़्यादा पुण्यात्मा है तो जन्म मरण को असली विपत्ति समझता है, तो जो छोटी छोटी विपत्तियाँ हैं उनमें वो विचलित नहीं होता है कि वो जो है ना अपने भजन के नियम को किसी प्रकार भी छोड़े। तो कुंती महारानी उस दृष्टि से अगर व्याख्या की जाए तो कुंती महारानी कहते हैं विपदा संतु, संतु माने आती रहें, ओम ताशत हमेशा आती रहें, है ना, हाँ जगत गुरु मतलब आती रहें विपत्तियाँ, भवतो दर्शनम यत्स्यात, हमें आपका वो दर्शन प्राप्त होना चाहिए, हम आपका वो दर्शन नहीं बंद करना चाहते हैं चाहे जितनी विपत्तियाँ हैं, जिस आपके दर्शन से अपनर्भव दर्शनम, इस भव जो भव सागर है उसका दर्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह की भी प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतः तथाकथित आपत्तियाँ मिथ्या होती हैं। स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वो इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो शेर रहता है ना आपत्ति, ये तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियाँ स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। अब आगे कुंती महारानी विपत्तियां क्यों मांग रही हैं? कुंती महारानी उसका जो है ना कारण बताते हैं कि विपत्तियां क्यों मांग रही हैं। जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भीर एध मान मदह पुमान नेवारहत्य विधा तुम वे त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्ठ भाव में से नहीं पहुँच पाता। तो कुंती महारानी विपत्तियाँ क्यों मांग रही हैं भगवान से? कि जन चार कारणों से व्यक्ति जो है क्या होता है, आपको देख नहीं पाता, अंधा हो जाता है, आपका भजन नहीं कर पाता है। चार कारणों से क्या है? उच्च कुल में जन्म और ऐश्वर्य धन संपत्ति, और तीसरा श्रुत शिक्षा, और चौथा सुंदरता। एधमान मदापान, तो उससे मद क्या होता है, एधमान हो जाता है। एधमान का मतलब क्या है? ईंधन जब आग में डाल दी जाती है तो अग्नि को कहते हैं एधमान, उसको कहते हैं एधमान, है ना। ईंधन आग में डाल दिया जाता है तो आग बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं आग में ईंधन डाला गया तो बढ़ गई, तो एधमान उसको बोलते हैं, एधमान। तो ये मद की तुलना अग्नि से की गई है। तो ये ईंधन है क्या? अच्छे कुल में जन्म लेना, मद अग्नि के समान है, घमंड अग्नि के समान है, और ये जो है ईंधन है। उच्च कुल में जन्म ये अच्छा ईंधन है जिसको जो जिससे कि ये घमंड की आग बढ़ जाती है, और धन संपत्ति ये भी अच्छा ईंधन है, और श्रुत शिक्षा और श्री सौंदर्य है। और ये जो अग्नि है जो जलाती है व्यक्ति को, है ना, तो उसका मन घमंड की आग में जलता रहता है, ये भी एक प्रकार की अग्नि है। और ये अग्नि कैसी है? जो आँखों को ढक देती है, जिससे कि आपको नहीं देख पाता वो, है ना। कोई अग्नि है वो प्रकाश पैदा करते हैं, ये अग्नि ऐसी है जो अंधकार पैदा करती है। ये धमान मधापन नेवार हत्य विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम, आपको नहीं देख पाता है। तो कुंती महारानी ये नहीं कहती कि भाई ये हमें ना प्राप्त हों, उच्च कुल में जन्म और धन और शिक्षा और सुंदरता, इसका ये मतलब नहीं है कि इनके कारण अगर घमंड पैदा होता है हमारे अंदर तो हम इनको छोड़ दें। नहीं, आपको जो है जो सुंदरता है, आपकी जो शिक्षा है, और आपके पास जो धन संपत्ति है, और उच्च कुल में जो जन्म है इसका, ये सब आपको रक्षा करनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हैं। इसलिए कुंती महारानी ये नहीं कहती हैं कि ये चीज़ें मतलब हमें ना प्राप्त हों, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है जो हमें प्राप्त हुई हैं ये चीज़ें तो इनको हम छोड़ें, ये सिद्धांत नहीं है। इनको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन इनके कारण अगर घमंड आता है हमारे अंदर तो इसके साथ साथ विपत्तियां भी हमें आए। तो कुंती महारानी विपत्तियां इसलिए मांग रही हैं भगवान से कि इन चीज़ों के कारण जो घमंड आता है तो विपत्तियों में जो है ना वो जो है घमंड नहीं रहेगा, है ना। तो इन चीज़ों के कारण घमंड आता है, तो हम क्या करते हैं, वैष्णवों का अपराध करते हैं, दूसरे भक्तों का अपराध करते हैं, है कि नहीं, मन से अपराध करते हैं, वाणी से अपराध करते हैं, शरीर से अपराध करते हैं, आपको देख नहीं पाते हैं, है कि नहीं, आपको नहीं देख पाते हैं कि आप जो है कितने प्रसन्न हैं या कितने रुष्ट हैं, आपको नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी जो है कारण बता रही हैं कि विपत्तियाँ वो क्यों मांग रही हैं, और ये चार चीज़ें हैं कुंती महारानी के पास हैं, ये चार चीज़ें, सुंदरता भी है और जो है शिक्षा भी है और धन संपत्ति भी है और उच्च कुल में जन्म भी, चारों चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो है हम मतलब छोड़ दें और इनको नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है, कि जो व्यक्ति सुंदर है तो वो भी लोगों को प्रभावित कर सकता है अपनी बातों से, है ना, वो भी एक प्रकार का आकर्षण है, है ना, और धन संपत्ति से भी लोग प्रभावित होते हैं, है ना, तो इनसे भी वो प्रचार में लगा सकता है। तो अपनी सुंदरता को भी भगवान के प्रचार में लगाया जा सकता है, धन संपत्ति को भगवान के प्रचार में लगाया जा सकता है, शिक्षा को भी भगवान के प्रचार में लगाया जा सकता है, उच्च कुल में जन्म हुआ है उसको भी भगवान के प्रचार में लगाया जा सकता है, है ना। तो कुंती महारानी प्रार्थना इसलिए कर रही हैं विपत्तियों के लिए कि विपत्तियां अगर रहेंगी तो फिर जो है हम सोचेंगे कि मैं इतना योग्य हूँ, इतना शिक्षित हूँ, इतना सुंदर हूँ, फिर भी मेरे ऊपर विपत्तियां क्यों आ रही हैं, इसका मतलब है कि इनसे मेरी रक्षा नहीं होने वाली है, भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, है ना। तो इसलिए घमंड ना रहे, इसके साथ साथ कुंती महारानी विपत्तियाँ मांग रहे हैं। तात्पर्य में प्रभु जी लिखते हैं, भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है उच्च कुल में जन्म लेना और प्रभुत संपत्ति शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे मदांध रहते हैं और यही भौतिक सभ्यता की उन्नति कहलाती है। तो यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि इसके पीछे परिश्रम करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। इसके साथ ये भी बिना प्रयास के जो चीज़ें ये अगर प्राप्त होती हैं तो इसका ये भी मतलब नहीं कि इसको हम छोड़ें, है कि नहीं। तो दोनों बातें हैं, इनके पीछे जो है अपना पूरा समय खराब करना कि भाई ये प्राप्त हो, सुंदरता, शिक्षा और ऊंचा कुल या प्रतिष्ठा और क्या, धन संपत्ति, तो इनको प्राप्त करने के लिए भी हम अपना समय खराब ना करें, लेकिन साथ में भी कि जब ये प्राप्त होते हैं स्वतः तो ये भी नहीं कि इनका त्याग किया जाए, दोनों बातें हैं। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, लेकिन इन समस्त भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदांध हो जाता है, अतएव भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने में तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम रहते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ, है ना, तो ऊंचे कुल में पैदा होने का मतलब सब चीज़ें हैं, जैसे कि सम्मान प्रतिष्ठा, कोई प्रधानमंत्री है तो वो भी, है ना, तो वो जो ना भगवान का नाम नहीं ले सकता इस प्रकार से असहाय होकर के दीनतापूर्वक हे कृष्ण हे गोविंद वो नहीं बोल पाता है, है ना। ऊंचे कुल में पैदा होने का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका में पैदा हुआ है कोई व्यक्ति, है ना, तो वो भी, है ना, ऊंचा जन्म है, है ना। तो इस तरह से कोई जो ना बहुत बड़े प्रोफेसर का लड़का है तो वो भी जो ना एक ऊंचा जन्म है। तो जन्म और ऐश्वर्य का मतलब धन संपत्ति, तो इसमें भी जो ना व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है, तो वो भी जो है ना धन संपत्ति के कारण उसको विश्वास रहता है कि धन संपत्ति के कारण मैं बहुत सुरक्षित हूँ, तो इसलिए वो भी दीनतापूर्वक असहाय पूर्वक भगवान का नाम नहीं ले पाता है, कृष्ण गोविंद इस प्रकार से भगवान के नाम नहीं ले पाता है। तो प्रभुपाल लिखते हैं कि भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का एक बार भी पवित्र नाम लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, ये भाव की गुणता पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बताया गया है कि भगवान का एक बार पवित्र नाम लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह पाप कर भी नहीं सकता, ये बताया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है हरे कृष्ण बोल दे तो उसका ये असर है, नहीं है। अकिंचन गोचरम, यहाँ पर भगवान के पवित्र नाम को चरण में बड़ा अंतर है, इसकी गुणता में बड़ा अंतर पड़ता है ना। कोई व्यक्ति पूरा लाभ भी उठा सकता है और कोई 1% लाभ उठाता है, कोई 2% लाभ उठाता है भगवान के पवित्र नाम से, है ना। लेकिन 100% लाभ कौन उठाता है, जो अपना इस संसार में कोई सहारा नहीं समझता, है ना। जैसे द्रौपदी ने जब कृष्ण को बुलाया था गोविंद द्वारका आवासी, जब बुलाया था द्रौपदी ने तो समय वो कौरवों की सभा के बीच में थी और उसके पति भी थे, ऊंच कुल में जन्म भी हुआ उसका, ऐश्वर्य बहुत, संपत्ति और श्रुत बहुत शिक्षित और बहुत सुंदर सब कुछ था। लेकिन द्रौपदी ऐसी विपत्ति में पड़ गई कि वो देख रही है कि कोई भी उसे नहीं बचा रहा है, कृष्ण के सिवा और कोई मेरा रक्षक नहीं है।
नाम लेना है कि आप इस विपत्तियों के समुद्र में डूब रहे हैं और आपको कोई बचाने वाला नहीं, उनके अलावा और कोई रक्षक नहीं है, है ना। और बिल्कुल व्यवहारिक स्थिति द्रौपदी की थी कि उसके पति जो ना पांचों पति उसके सामने बैठे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो इस प्रकार से जो है बंधे हुए हैं, कुछ ऐसी स्थितियों में बंधे हुए हैं कि वे कुछ भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और भीष्म द्रोण जैसे बड़े बड़े जो धर्म के विद्वान हैं, गुरु हैं, धर्म के गुरु हैं, वे भी कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं। तो वो जो द्रौपदी ने नाम लिया तो कृष्ण कहते हैं ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान्नाभ सरपति, वो ऋण जो है द्रौपदी का मेरे हृदय में बढ़ता जा रहा है, वो जो नाम है। तो द्रौपदी शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो शुद्ध प्रेम में हमेशा ही कृष्ण का स्मरण करते हैं। लेकिन ये जो है हम लोगों की शिक्षा के लिए है कि भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी का ऋण मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। यद गोविंद यदि चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम, कि मुझको दूर समझ करके कृष्णा ने यानी द्रौपदी ने गोविंद कह करके मुझे पुकारा था, तो वो ऋण जो है ना मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, है ना। तो ऐसा नाम चाहिए, ऐसा नाम चाहिए। तो कुंती महारानी ऐसी विपत्तियां चाहती हैं जिनमें इस प्रकार से नाम ले सकें कृष्ण का, कि सेवा तुम्हारे और कोई नहीं है, मेरा रक्षक, मुझे बचाने वाला। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, ये भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है। तो यही भाव विभोर, यहाँ पर भाव विभोर होने का ये मतलब नहीं है कि मैं कितना भक्त हूँ, आप भी मतलब महान हैं और मैं भी महान हूँ, आप जो है ना महान भगवान हैं और मैं महान भक्त हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका अनुरागी हूँ, मैं भी बहुत श्रेष्ठ हूँ, आप भी श्रेष्ठ हैं आप और मैं भी श्रेष्ठ हूँ, ये नहीं है, यह नहीं है। ईश्वर से आप अभिमान है द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच, ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दीनता प्यारी है, दीनता प्रिय है। यहाँ तक कि गोपियों को भी भगवान ने त्याग दिया, क्यों, क्योंकि वो अपने को भाग्यशाली समझने लगी कि हम कितने भाग्यशाली हैं दूसरी संसार की स्त्रियों में, कि वो भगवान जिनका ब्रह्मा शिव भी दर्शन नहीं कर पाते हैं वो हमारे कंधे में हाथ रखे हुए हैं। तो अपने को जहाँ श्रेष्ठ हम समझते हैं तो वहीं पर जो है गिर जाते हैं, भक्ति से गिर जाते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई समृद्ध व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। समृद्ध व्यक्ति है, अगर वो भगवान का नाम लेता है तो वो क्या सोचता है, भाई इसमें कुछ पुण्य मिल जाएगा मुझे, इससे मुझे कुछ यज्ञ का फल मिल जाएगा, तो इस तरह से जो है उसके अंदर श्रद्धा होती है, है ना, लेकिन वो समर्पण तो नहीं होता, वो पूर्ण समर्पण तो नहीं होता, लेकिन नहीं। तो विपत्तियों में ही अगर हम पूर्ण समर्पित हों तो हमें वो विपत्तियाँ चाहिए, कुंती महारानी ये जो ना कह रही हैं। तो असली जो विपत्ति है वो कृष्ण को भूलना है। अगर जिस संपत्ति में हम कृष्ण को भूलते हैं वो विपत्ति है असली, और जिस विपत्ति में हम कृष्ण का स्मरण करते हैं वो असली संपत्ति है, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि ब्रह्मा का भी मुझे पता नहीं चाहिए आपसे विमुख होकर के कि आपको भूल जाऊं, तो बहुत बड़ी विपत्ति है कृष्ण को भूलना, है ना। और कीट जन्म, कीड़े का जन्म चाहिए मुझे, घर में हम कीड़े बन जाएं जैसे बहुत से कीड़े पहले से हैं, लेकिन हाँ तो किसी भी शुद्ध वैष्णव के घर में बहुत से कीड़े होंगे, ये वो कहाँ कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे कि मैं व्यासन पर बैठा हुआ हूँ, है ना, और उसमें माला पर भी या व्यासन पर भी कोई कीड़ा हो सकता है कि नहीं, उसकी स्थिति क्या है, है ना? वो तो बिल्कुल घोरा अज्ञान में है, वो प्रभुपाद के अगर गले की माला में भी बैठा हुआ है तो भी क्या लाभ है, वो थोड़ी कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो भक्तिनो ठाकुर जो कह रहे हैं कि वैष्णव के घर में मैं कीड़ा बन जाऊं, तो उनके कहने का मतलब है कि मैं इस चेतना में तो रहूं कि मैं कहां पर हूं, है कि नहीं, तो ये मतलब है। कई लोग हैं मंदिर में भी होते हैं लेकिन वो उस चेतना में होते ही नहीं कि वे मंदिर में हैं, इसलिए हमें बीच में चिल्लाना पड़ता है कि आप लोग होश में रहो कि आप लोग कहाँ पर हैं, आप मंदिर में हैं। वो अपने घर की बातें कर रहे हैं और जो है ना बातें कर रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, आपस में मित्रता का, समाज का जो है ना ये सब वो व्यवहार कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है। भक्तिनो ठाकुर जब कहते हैं कि वैष्णव के घर में कीड़ा बन जाऊँ, इसका मतलब ये है कि अपनी दीन स्थिति को हम समझें कि मैं वैष्णव के घर में एक कीड़ा बन गया हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तो ये जो है दीनता की स्थिति है जिसमें कि वो जो है इस चेतना में रहना चाहिए, है ना, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए मुझे, वैष्णव के घर में मैं कीड़ा बनने की इच्छा कर रहा हूँ। तो भक्तिनो ठाकुर ये जो प्रार्थना कर रहे हैं तो यही है कि कृष्ण का स्मरण हो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। अयोग्यता जब तक रजोगुण में है तो रजोगुण में ये चीजें क्या करते हैं, घमंड पैदा करते हैं, विशेष रूप से रजोगुण में अगर कोई व्यक्ति होता है, अगर ये चीज नहीं भी होती है तो भी कुछ ही ना किसी कारण से घमंड आ ही जाता है उसके अंदर। रजोगुण में अगर कोई व्यक्ति होता है तो अगर भिखारी भी है, सड़क का भिखारी भी है, तो उसके पास 10 पैसा ज्यादा तो उसमें भी उसको घमंड हो जाता है ना, ये समस्या है। और थोड़ा सा अशिक्षित भी है उसको भी घमंड हो जाता है, थोड़ी सी उसको शिक्षा मिल जाती है तो उसको घमंड हो जाता है और हमेशा अपने से कुछ कम होते ही हैं लोग, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मूर्ख हो, अशिक्षित हो, और बदसूरत हो, कुरूप हो, लेकिन उससे भी कम, उससे भी गिरे हुए लोग उसको मिल जाते हैं, तो उनके बीच में अपने को फिर समझने लगता है कि मैं दादा बन गया, मैं धनी बन गया, मैं करोड़पति बन गया, है ना। तो ये रजोगुण के कारण जो है ना, ये इस प्रकार का घमंड आ जाता है। वो उठता है, बैठता है, तो उसमें भी अपने को जो है सोचता है कि मैं राजा बन गया हूँ, उसके अंदर इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। तो ये अयोग्यताएं हैं। भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाहरी गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाहरी गुण है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की मात्रा कम की जाए, ना कि बुरे उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उल्टे ये निर्धनता शुभ चिन्ह है, जिस प्रकार के शरीर का ताप घटना शुभ है। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मत को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक मोहग्रस्त होता जाता है। तो मतलब कहने का वही विपत्ति, अगर संपत्ति घट गई, निर्धनता आ गई, तो एक प्रकार की विपत्ति है ना। तो वो घमंड जो है किसी भी प्रकार से घटे तो भक्ति में सहायक है। तो कुंती महारानी इस प्रकार से विपत्ति चाहती हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इन दो श्लोकों पर आज की चर्चा है। तो कुंती महारानी जो है भगवान से विपत्तियाँ मांग रही हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये समझना है कि विपत्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। कुंती महारानी जहाँ पर हैं, हस्तिनापुर में, कृष्ण जो है जा रहे हैं द्वारका के लिए, तैयारी कर रहे हैं, तो कुंती महारानी को विपत्ति मांगने की क्या जरूरत है। यमुना जी के किनारे हैं, यमुना जी में कूद जाए तो विपत्ति आ जाएगी, है ना। तो कृष्ण से विपत्ति मांगने की जरूरत नहीं है, आपने घर की छत से कूद जाओ तो विपत्ति है कि नहीं। तो विपत्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है, है कि नहीं। तो कुंती महारानी जो विपत्ति मांग रही हैं, वास्तव में वो कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, और कृष्ण दर्शन देते हैं, कुंती महारानी को कृष्ण दर्शन देते हैं विपत्तियों में। जब विपत्तियों में होती हैं तो कृष्ण का दर्शन होता है। दर्शन एक तो ये कृष्ण का स्मरण करना भी अपने आप में एक दर्शन है, कृष्ण का स्मरण करना अपने आप में एक दर्शन है, और फिर दर्शन वैसे भी कृष्ण देते हैं जैसे द्रौपदी विपत्ति में पड़ी, हैं, जब दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों के साथ, हैं, 10,000 शिष्यों के साथ आए कि अब मैं भोजन करूँगा, अभी स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके आऊँ तो भोजन तैयार मिलना चाहिए मुझे बिल्कुल, है ना। तो द्रौपदी विपत्ति में पड़ी तो कृष्ण को स्मरण किया तो कृष्ण आ गए, भूखे आ गए कृष्ण भी भूखे आ गए, हैं, और कहते हैं मैं भूखा हूँ, जल्दी लाओ खाने, मुझे खाना। द्रौपदी के दिल्लो, तुमको मैं याद कर रही थी, हैं, कि एक बड़ी समस्या है, भोजन है ही नहीं, दुर्वासा मुनि के लिए 10,000 शिष्यों के लिए भोजन नहीं है, और तुम भी जो ना भोजन मांग रहे हो, मैंने तुमको याद किया, हैं, कि ये भोजन की समस्या के कारण, और तुम और ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हो। तो कृष्ण के, मैं तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले भोजन दे दूँ। द्रौपदी कहती, भोजन कहाँ है, अक्षय पात्र तो मैंने साफ करके रखा है, हैं, अब उसमें भोजन निकल नहीं सकता, मैं खा चुकी हूँ, अब तो भोजन निकल नहीं सकता है। तो बोली, तो तू दिखाओ अक्षय पात्र, उसमें कुछ तो लगा होगा। द्रौपदी कहती, कुछ नहीं लगा उसमें। कहते, अरे तू दिखा तो। तो जैसे ही दिखाया उसमें एक पत्ता चिपका हुआ था, तो कृष्ण कहते, देख तू कहती थी इसमें भोजन नहीं है, भोजन मिल गया ना मुझे, हैं। तो एक पत्ता जो है कृष्ण ने वो खाया, और इसको खाते ही कृष्ण ने क्या कहा कि पूरा जगत तृप्त हो जाए। तो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य जो है स्नान करके तैयार हुए थे भोजन के लिए, तो सरस्वती नदी में स्नान करके तैयार हुए थे, और ऐसा लगा उनको कि जैसे पेट कस के भरा है उनका। और भगवान कृष्ण सहदेव से कहते हैं कि सहदेव जाओ, अब बुला के लाओ उनको भोजन के लिए। तो इस तरह से जो है भगवान दर्शन देते हैं विपत्तियों में। तो कुंती महारानी कहती हैं कि विपत्तियों में आपका दर्शन हमें प्राप्त होता है। और ये महाभारत का युद्ध भी बहुत बड़ी विपत्ति थी। 18 दिन का जो महाभारत का युद्ध था, ये बहुत बड़ी विपत्ति थी, है ना। तो कृष्ण ने जो है चुनाव दिया अर्जुन को कि एक तरफ मैं खाली दर्शन दूंगा बस, मैं खाली दर्शन दूंगा बस और कुछ नहीं करूंगा, कुछ सहायता नहीं करूंगा, युद्ध में भाग नहीं लूंगा, खाली दर्शन दूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना 1 अरब सैनिकों की सशक्त और सशस्त्र सेना, शस्त्रों की सही सेना मांग लो, क्या मांगना है। अर्जुन को अधिकार दिया मांगने का, चुनाव चुनो। तो अर्जुन ने कहा तुम्हारा दर्शन चाहिए मुझे, तुम्हारा दर्शन चाहिए, है ना। तो विपत्तियाँ, तो कुंती महारानी कहती हैं ऐसी विपत्तियाँ रहें जिनमें तुम्हारा दर्शन होता है। अब विपत्ति चली गई तो आप जा रहे हो, अब विपत्ति चली गई अब निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया हमें, अब कोई विपत्ति ही नहीं है, है ना, इसलिए आप जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना कुंती महारानी कहती हैं कि हम विपत्तियों में रहें जिससे हमें आपका दर्शन होता है। जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों को तो विपत्ति में पड़े हैं। तो काम वन में कृष्ण मिलने आए थे 5 पांडवों से और द्रौपदी से। कुंती महारानी तो उस समय हस्तिनापुर के महल में थी, हालांकि वो भी बहुत कष्ट में थी, बहुत दुख था कि उनके 5 पांडवों को द्रौपदी के साथ वनवास प्राप्त हुआ है और अपमान हुआ। लेकिन विपत्ति में जो है 5 पांडव और द्रौपदी थे तो उनको भगवान ने दर्शन दिया, भगवान उनसे मिलने आए, पांडवों के साथ संवेदना प्रकट की, सहानुभूति प्रकट की, है ना। तो वो सुख है, कुंती महारानी कहती हैं ये हमारा सुख है कि विपत्तियों में आप जो है हमारे पास आते हो। तो कृष्ण जो है 5 पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ बड़ी घनिष्ठता पूर्वक बातें करते रहे। द्रौपदी ने अपना दुख सुनाया कृष्ण को और कृष्ण सुनते हैं द्रौपदी के कष्ट को और द्रौपदी जो है शिकायत करती है कृष्ण से कि तुमसे मेरा इतना निकट का संबंध होते हुए भी मेरा इतना इस प्रकार से अपमान हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और कृष्ण द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते हैं कि जिन शत्रुओं ने तुम्हें विपत्ति में डाला है और तुम्हारे केस खुल गए हैं, द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं केसों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक कि दुशासन के रक्त से अपने केसों को ना धोऊं, अभिषेक ना करूं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे तुम्हारे केस खुले हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उन शत्रुओं की स्त्रियां भी अपने केस खोलेंगी, मतलब अपने पतियों की मृत्यु के कारण तुम्हारे शत्रुओं का विनाश होगा तो उनकी पत्नियां केस खोलेंगी अपने, ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है द्रौपदी के साथ और 5 पांडवों के साथ में बहुत घुल मिल करके बातें करते हैं। और विपत्ति में जो है हमेशा युधिष्ठिर को जो है सलाह देते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, द्रौपदी को सलाह देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए विपत्ति में, अर्जुन को सलाह देते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए विपत्तियों में, है ना। तो ये जो है एक बहुत बड़ी संपत्ति है पांडवों की। तो इसको जो है ना वो जो है मानते हैं अपना सुख, इसको सुख मानते हैं। और जब कृष्ण चले गए द्वारका पांडवों को राज्य कि कृष्ण ने हमें क्या किया है, मूर्ख बना दिया है, धोखा दे दिया है, ये देखने के लिए तो राज्य संपत्ति है या असली में बहुत घोर विपत्ति है क्योंकि कृष्ण का संग छोड़ गया है। तो कृष्ण हमको मूर्ख बना के चले गए, है ना। और कुंती महारानी यही कहती हैं कि अब तुम जा रहे हो हमारी विपत्तियां दूर हो गई तो तुम भी दूर जा रहे हो, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति है। और जब तक विपत्तियां थीं बहुत बड़ा संकट था, भीष्म के कारण बड़ी विपत्तियां आईं, द्रोणाचार्य के कारण बड़ी विपत्तियां आईं, कर्ण के कारण विपत्तियां आईं, बहुत सी विपत्तियां आईं महाभारत के युद्ध में। कैवर्त कहा केशव, भीष्म द्रोण जटा जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, शल्य ग्राह्यवती कृपेण वहनी, कर्ण वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधनी सोत्तीर्णा खलु रणनदी, सोत्तीर्णा खलु पांडव रणनदी, कैवर्त कहा केशव। तो केशव जो है कैवर्तक हैं, मतलब नाविक हैं, खेने वाले हैं। और ये महाभारत रूपी जो युद्ध की नदी है वो पांडवों ने पार की। और इस नदी सबसे बड़ी विपत्ति क्या थी, भीष्म द्रोण जटा, जटा मतलब शैवाल, नदी में जो है ना जो शैवाल होती है तो उसमें फंस जाती है नाव, तो बुरी तरह से फिर जो है ना वो फंसती है और डूब जाती है फिर नाव। नदी में बड़ी बड़ी वो सब शैवाल घास होती है तो उसमें फिर वो फंस जाती है नाव। तो ये बहुत बड़ी जो है विपत्ति है, भीष्म द्रोण जटा, जयद्रथ जला, और जयद्रथ इसका जल है, नदी का जल जयद्रथ है, जयद्रथ ने भी बड़ी विपत्ति में डाला था, है कि नहीं। जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, और गांधार मतलब जो शकुनी था वो नील कमल के समान, मतलब वो क्या है, कपटी है, बहुत बड़ा कपटी है। तो जैसे नीले नीले कमल दिखाई पड़ते हैं नदी में तो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो इसका बड़ा आनंद ले सकता हूँ, और वो नदी में डूब जाएगा नीले कमल लेने जाएगा तो वो जो है ना बहुत भले कपटी था। तो वो जो है ना नीले कमल है इस नदी के, कौन, शकुनी, गांधार नीलोत्पला, शल्य ग्राह्यवती, और शल्य जो है ना शल्य मामा ये इसके ग्राह हैं, ग्राह मगरमच्छ, बहुत भयानक मगरमच्छ, और कृपाचार्य वहनी, वहनी इसको क्या कहेंगे, बहाव कहेंगे, जो भी हो कुछ, ये भी विपत्ति है। कृपेण वहनी, कर्ण वेलाकुला, और कर्ण जो है ना इसके भयानक तट है, नदी का भयानक तट कर्ण है, कर्ण वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा विकर्ण ये बड़े बड़े भयानक जल जंतु हैं। दुर्योधन आवर्तनी, और दुर्योधन क्या है, आवर्तनी, आवर्त माने भंवर, नदी में भयानक जो क्या बोलते हैं, भंवर बोलते हैं, जिसमें डूब जाता है वो, है ना, घूमती है, हाँ पानी घूमता है वो डुबा दे रहा है, दुर्योधन जो है ना वो है ना, नौका भी जो डूब जाती है अगर भंवर में पड़ जाए नौका तो वो भी घूम करके और अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी, है ना। तो दुर्योधनावर्तनी सोत्तीर्णा खलु पांडव रणनदी कैवर्त कहा केशव, तो इतनी बड़ी विपत्ति से पांडवों को बचाया है, मृत्यु के संकट बहुत बड़े बड़े मृत्यु के संकट आए, और कृष्ण ने कुंती को वचन दिया था कि महाभारत युद्ध के अंत में तुम्हारे पांचों जो पुत्र हैं उनको मैं रक्षा करूँगा, जिंदा बचेंगे, और यही जिंदा बचे, और कौन बचा जिंदा, सब मारे गए, कौन बचा, पांडवों के पक्ष में सात लोग केवल जिंदा बचे, श्री कृष्ण, सात्यकी और पांच पांडव, और कोई नहीं बचा, सब मारे गए, है ना। अभिमन्यु मारे गए, अर्जुन के पुत्र थे, इरावान अर्जुन के पुत्र थे वो मारे गए, और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी मारे गए, है ना। पांडवों के वंश में भी कोई नहीं बचा, परीक्षित गर्भ के अंदर रहे केवल बस, और कोई नहीं बचा, है ना। और कौरवों के पक्ष में केवल तीन लोग जिंदा बचे, कौन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तीन लोग जिंदा बचे केवल, सब मारे गए। तो कृष्ण की विशेष कृपा थी जिनकी पांच पांडव केवल जिंदा बचे, बहुत बड़ी विपत्ति है ना। तो कृष्ण ने कितना जो है साथ दिया कि उनके साथ सोते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ चलते फिरते बैठते, उनके सारथी बन गए हैं, और उनके दूत बन गए, द्रौपदी के जूते भी उठाए उन्होंने, हैं, जब भीष्म से मिलने गई द्रौपदी तो कृष्ण ने जूते उठा लिए द्रौपदी के अपने हाथ में, है ना। तो कितना जो है मतलब कृष्ण ने जो है कार्य किया पांडवों का, तो ये तो जो है ना मतलब सौभाग्य था पांडवों का। तो ये विपत्ति जो है बहुत बड़े सौभाग्य है, विपत्तियाँ चले गई तो सौभाग्य भी चला गया, है ना। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि अब आप जा रहे हो तो ये जो है हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। विपदा तंतु संतु तासस्पत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, है ना। तो कुंती महारानी इतनी शुद्ध भक्त हैं, वो भवबंधन में नहीं हैं, वो तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शिक्षा के लिए कि हम लोगों की स्थिति कैसी है हमें समझना चाहिए, है। तो इस तरह से जो है एक दोहा भी है, सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिल पड़ो, ऐसे सुख के माथे में सिल पड़े यानी पत्थर गिर जाए, ऐसे सुख के माथे में पत्थर गिर जाए, जो नाम हृदय से जाए, जिसके कारण हृदय से नाम चला जाता है कि नहीं। सुख में भगवान के नाम की क्या जरूरत है, ये विचार आता है। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, तो वो दुख ही जो है ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें पल पल नाम याद आता है, है ना। तो ये जो है ना कुंती महारानी की प्रार्थना है। हमारी ये प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियाँ आए, हमारी प्रार्थना क्या है कि भक्तों का संग प्राप्त हो, है ना। भक्तों का संग प्राप्त हो और जो है अपराधों से बचें, दशनाम अपराधों से बचें, है। हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो कि हम विपत्तियाँ देखें, हमें विपत्तियाँ दिखाई पड़ें। ये भौतिक संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, हमें ज्ञान के वो नेत्र प्राप्त हो जैसे जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के दुख दोष हमेशा दिखाई पड़े। अगर कोई भी विपत्ति नहीं है, है तो ये तो विपत्ति है ही है, सबके ऊपर ये विपत्ति है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी की सबके ऊपर विपत्ति है। विपत्ति को देखो, सबके सामने विपत्ति है। तो हमारी आंखें खोलें, हमारी यही प्रार्थना है। अब कोई प्रश्न है किसी का, इनका प्रश्न है कि कुंती महारानी कृष्ण की बुआ थी कैसे। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे कृष्ण की बुआ थी। कुंती महारानी कृष्ण के पिता की बहन है, कृष्ण के पिता हैं वसुदेव जी, ठीक है। तो इनकी 5 बहनें हैं, कुंती सबसे बड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कुंती महारानी कृष्ण की बुआ है। और कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि धर्म के पक्ष में जो सैनिक थे वो क्यों मारे गए, और ये जो अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य अधर्म के पक्ष में थे वो क्यों नहीं मारे गए। ये जो युद्ध था महाभारत का, तो ये पृथ्वी का भार उतार, हालांकि धर्म के पक्ष में थे लेकिन पृथ्वी के भार ही थे, अधर्म के पक्ष में थे राजा लोग ये भी पृथ्वी के भार ही थे। और जब इस युद्ध में मारे गए तो वे उन अपने पापों से छूट गए, उनकी चेतना की शुद्धि हुई, है ना। तो ये जो है बहुत सौभाग्य था। और फिर कृष्ण जब उसमें युद्ध में उपस्थित हैं तो फिर और विशेष लाभ है, है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, है ना, वो अगर मारे भी जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो नहीं मारे जाएंगे, है ना। जो शरीर है इसमें तो जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है ही है कि नहीं। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि मतलब जो भक्त हैं वो नहीं मरते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि भक्त भी मरते हैं और अभक्त भी मरते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि वही बिल्ली का मुख है, लेकिन उस मुख में जब चूहा जाता है तो वो मौत देखता है अपनी, और बिल्ली का बच्चा जाता है तो सुरक्षा देखता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है मरने में कोई अंतर नहीं है, जीव वा मरो वा, आप जियो चाहे मरो। भक्त के लिए कुछ भी नहीं है कि वो किस स्थान में मरे, वो किस समय मरे, किसी भी समय मर सकता है, किसी भी स्थान में मर सकता है। उसके लिए वो योगियों के मतलब आवश्यकता नहीं है, योगियों के नियम की कि भाई इस स्थान में इस समय शरीर छोड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ता है योगी के लिए। भक्त के लिए ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जीने मरने में कोई अंतर नहीं है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न, साधारण जीवन में कैसे भगवान का स्मरण प्राप्त कर सकते हैं? इसी के लिए प्रभुपाद जी ने हमें एक बंधन दिया है कि आपको कम से कम 16 माला जाप करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चाहे आपकी इच्छा ना हो तो भी आपको 16 माला जाप करना पड़ेगा। ये भी एक विपत्ति है कि आपको 16 माला जाप करना है। एक भार आपके ऊपर डाल दिया है प्रभुपाद ने कि आपको 16 माला जाप करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप रो करके भी आप जाप करो, लेकिन करो जाप, हंस के करो या रो के करो, करो जाप। इसको चाहे आप विपत्ति समझो, इसको आप भार समझो, चाहे कष्ट समझो, करो जाप, है ना। तो इसी से जो है, जब आपके पापों का भार समाप्त होगा तो फिर इसमें आपको जो है फिर रुचि पैदा होगी, है ना। तो ये है जो है भगवान के नाम का जो ना ये गुण है कि ये जो है आपकी चेतना को शुद्ध करेगा, है? आपको जो है इसमें प्रयास करना है, प्रयत्न पूर्वक जाप करना, ठीक है। आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बंधन। और कोई प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि अगर हम कष्ट समझ करके, विपत्ति समझ करके जाप करते हैं, इतना लाभदायक तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी लाभदायक हो इसी से लाभ है, और कोई दूसरा लाभ है ही नहीं, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, ठीक है ना। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि आपके अंदर अभी इच्छा नहीं है जाप करने की, आपके अंदर श्रद्धा नहीं पैदा हो रही जाप करने की, आपके अंदर भगवान के प्रति बड़ा प्रेम नहीं पैदा हो रहा है जाप करने में, बड़ा आनंद नहीं आ रहा है, तो आप जो है ना जाप नहीं करोगे, है ना। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितार्थ हिताप्य विद्या तोप्य तप्त रसन से न रुचिकान, किंतु आदरात अमृतम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद् गद मूल हंत्री। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के नाम चरित्र आदि में जो है अगर आप को रुचि नहीं पैदा हो रही है तो ये क्या है? सितापी, ये तो है मधुर, लेकिन अविद्या रूपी जो पित्त की बीमारी है, पीलिया है, अविद्या रूपी पीलिया की जो बीमारी है, पित्तोप तप्त रसन से, तो उससे उपतप्त है रसना, जिह्वा में पित्त मतलब आ गया है, तो वो जो मीठा है वो कड़वा लग रहा है ना, तो उसमें रुचि नहीं पैदा हो रही है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का चरित्र, ये सब जो है क्या है? कड़वे लग रहे हैं, है ना। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव दुष्टा, अपने को बीमार समझ करके आप मिश्री खाते हो, पीलिया की बीमारी में जो पीलिया का रोगी है अपनों को बीमार समझ करके मिश्री खाता है, है ना, मीठा समझ कर नहीं खाता है, उसको तो कड़वी लग रही है, लेकिन वो अपनी बीमारी को दूर करने के लिए वो मिश्री खाता है, है ना। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, तो उसको ही जो ना सेवन करता है अनुदिनम, प्रतिदिन आदरात, आदर पूर्वक, कड़वी दवाई है, आदर पूर्वक आप लेते हो, स्वादिष्ट तो नहीं लग रही है दवाई, कड़वी लग रही है, आदर पूर्वक आप ले रहे हो, क्यों? आदर पूर्वक बीमारी को आप समझते हो कि आपकी बीमारी है, ये आपकी बीमारी दूर करेगी, इसलिए आदर पूर्वक आप लेते हो, है कि नहीं। तो खलु सैव जुष्टा स्वादी क्रमात् भवति, तो ये क्रम पूर्वक धीरे धीरे ये स्वादिष्ट लगने लगेगा और वो बीमारी दूर कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपकी जो अरुचि की बीमारी है वो दूर कर देगा ये भगवान का नाम, और ये मधुर लगने लगेगा। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न कि हस्तिनापुर में जब पांडवों कौरवों का राज चल रहा था तो आध्यात्मिक उन्नति थी, और इस समय वो उन्नति नहीं है, इस समय ऐसी स्थिति क्यों है? ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, और उस समय जो है कौरवों का राज चल रहा था या पांडवों का राज चल रहा था, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे, और फिर द्वापर युग था, द्वापर युग में अधर्म 50% होता है, 50% अधर्म होता है और 50% धर्म होता है, और कलयुग में अधर्म 75% होता है और धर्म 25% होता है, और धीरे धीरे अधर्म बढ़ता जाता है और फिर अधर्म 100% हो जाता है, और धर्म शून्य हो जाता है, है ना? तो फिर वो तो बिल्कुल विनाश, फिर तो पूरा विनाश होता है, है ना? तो जैसे जैसे अधर्म की जो मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो सुख संपत्ति है और सुविधाएं हैं वो सदगुना घटती जाती हैं, ठीक है ना? और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर गंगा के तट पर है। हस्तिनापुर जो है वो मेरठ के तरफ का जो हिस्सा है, जो गंगा जहाँ पर है, वो हस्तिनापुर का क्षेत्र है। और हस्तिनापुर के क्षेत्र में ही परीक्षित महाराज थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था, तो वहाँ शुक्रताल भी है गंगा के तट पर। और पांडवों को जो है इंद्रप्रस्थ का जो राज्य दिया था, जो जंगल था, तो ये स्थान है, वो ये इंद्रप्रस्थ है। इन कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ को बसाया, जंगल का जो स्थान था वो जो है फिर बसा, है ना? तो इंद्रप्रस्थ का फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गया, मंगल हो गया कृष्ण के कारण। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि नर नारायण भगवान अभी भी तपस्या कर रहे हैं, तो क्या उनके दर्शन हो सकते हैं? नर नारायण भगवान जो है दर्शन देते हैं सतयुग में। सतयुग में भगवान जो है बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं। त्रेता युग में भगवान रामेश्वरम में, और द्वापर युग में भगवान द्वारका में, और कलयुग में भगवान जगन्नाथपुरी में, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है नर नारायण के दर्शन सतयुग में होते हैं। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की
जय।
श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की
जय।
श्री श्री गौणताय भगवान की
जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय।
श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की
जय।
हरे कृष्णा।